You're listening to the Quince podcast.
ये जो यूपी है ना, यहाँ चार चरणों का मतदान हो चुका है। 27 फरवरी को पांचवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण का मतलब है अवध और पूर्वांचल, जहां 12 जिलों की 61 सीटें हैं। कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको हमारे रिपोर्टर्स से मिलवाएंगे जो ग्राउंड पर हैं और वोटर्स का मूड जानने और समझने में लगे हैं। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है और समझा है कि पांचवें चरण के असल मुद्दे क्या हैं और सियासी हवा किस ओर बह रही है।
लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स, यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना।
सो वेलकम टू द पॉडकास्ट ये जो यूपी है ना। ग्राउंड पर क्या चल रहा है, उससे पहले आज की बड़ी अपडेट्स आपको बताते हैं। वैसे दुनिया का बड़ा अपडेट है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। यूपी में भी इस पर बात हो गई। जयंत चौधरी ने कहा, रूस यूक्रेन टकराव और इसका क्रूड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर होने वाले असर को देखते हुए आरबीआई को वृद्धि अनुमान, इन्फ्लेशन और ब्याज दरों पर रुख की समीक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार को व्यर्थ के खर्चे, सेंट्रल विस्ता को रोक कर तेल उपभोक्ताओं को राहत देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में थे। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादी कभी सशक्त और आधुनिक उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अफवाहवादी, पलायनवादी और घोर अंधविश्वासी भी हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राशन सपा के गुर्गों के पास चला जाता था और हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन उसमें समा जाएगा। उधर बहराइच में गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी जी ने ऐसे शासन चलाया है कि दूरबीन लेकर भी कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, हर जगह पर बजरंग बली ही दिखाई पड़ते हैं। ये थी नेताओं के भाषणों की बात। अब इन भाषणों से दूर ग्राउंड पर चलते हैं, जहां क्विंट के रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी यूपी का चौथा चरण पूरा हुआ है। बात खासकर अगर लखनऊ की करें तो वहां कोरोना एक बड़ा मुद्दा था। क्विंट की रिपोर्टर फातिमा खान ने लखनऊ में कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लोग कोरोना की त्रासदी झेलने के बावजूद बीजेपी को ही वोट करना चाहते हैं। सुनिए फातिमा को।
जब मैं लखनऊ गई तो मेरा एक ये स्पेशल फोकस ये भी था, जो मैं और स्टोरीज कर रही हूँ उसके साथ साथ, कि मुझे पर्सनली मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने इमीडिएट लव्ड वन को, क्लोज करीबी किसी को खोया है कोविड की सेकेंड वेव में, जो बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक कोविड की सेकेंड वेव थी, जिसमें गंगा में बहती बॉडीज ने पूरी देश में एक तरह का आक्रोश, आउटरेज जो है लोगों में देखने को हमें मिला। लोग रो रहे थे हॉस्पिटल्स के सामने ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो मुझे जानना था कि उस वक्त ये बात हो रही थी कि कोविड जो है वो बीजेपी का डाउनफॉल होगा, भाजपा का डाउनफॉल होगा, क्योंकि जो कट्टर बीजेपी सपोर्टर्स हैं, लॉयलिस्ट हैं, उन्होंने भी तो अपने माता पिता, हस्बैंड, भाई, बच्चे, किसी को खोया है कोविड में, तो वो क्या अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं। और ये मुझे पर्सनली भी इसमें मैं इन्वेस्टेड थी, क्योंकि मैं सेकेंड वेव की पीक में मैं ग्राउंड पे थी, यूपी में कवर कर रही थी, मैं ऐसे लोगों से मिली जो बीजेपी के बहुत सपोर्टर थे, आरएसएस के खुद वर्कर थे, और उनकी मौत हो गई कोविड में, और उनकी फैमिली बहुत गुस्से से में थी मोदी के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन ये मेरे लिए जरूरी था देखना कि अब क्या वो लोग अभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। तो मैं गई और मुझे खुद में एक सरप्राइज थी ऑनेस्टली मेरे अंदर, कि ऐसे लोग मुझे मिले जो एक साल भी नहीं हुआ इस चीज को और वो पूरी तरह से इसको भुला चुके हैं। ऐसे मुझे लोग मिले, एक मुझे ऐसे किरदार मिले, उनका नाम था स्वप्निल रस्तोगी, वो 26 साल के लड़के थे, उनके उन्हें प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने पिताजी को खोया था कोविड की सेकेंड वेव में, और उन्होंने बताया कि कैसे उनको बहुत प्रॉब्लम से हॉस्पिटल बेड मिला, लेकिन उसके बाद वेंटिलेटर ढूंढने चले, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तब से उनके पिताजी की मौत हो गई। और उन्होंने बोला कि उनके पिताजी खुद बहुत बड़े बीजेपी के सपोर्टर थे और उनको एंड में एक बेड भी नहीं मिला। तो स्वप्निल खुद बहुत गुस्सा थे, लेकिन वो ये कह रहे थे मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, मेरे पिताजी के खुद के रिश्तेदार हैं जो अभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सब कुछ भूल गए हैं। और फिर वो मुझे ले गए अपने ताऊजी से मिलवाने, जो उनके पिताजी के बड़े भाई जो हैं, जिनको वो बड़े पापा बुला रहे थे। और उनसे मेरी बात हुई लंबी, और वो ये कह रहे थे कि मैं अभी भी, मुझे नहीं लगता है कि हाँ युवसक जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन की कमी थी, वो ब्लैक मार्केटर्स काला बाजारियों की गलती थी, बीजेपी की थोड़ी, योगी आदित्यनाथ को तो खुद हो गया था कोविड, तो आप उनको कैसे ब्लेम कर सकते हैं, ये तो ऐसी चीज है जो अमेरिका भी नहीं हैंडल कर पाई, तो हम तो फिर भी डेवलपिंग नेशन है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, बीजेपी को नहीं, योगी जी को नहीं। उन्होंने बिल्कुल इस तरह से उन्होंने रैशनलाइज कर लिया, जिसे हम कहते हैं अपने हेड में उन्होंने समझा लिया अपने आप को कि हाँ इसमें योगी का कोई दोष नहीं था। अच्छा, अब आगे बढ़ी, मैं एक तारा तिवारी से मिली, एक मिडिल एज वुमेन, उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया कोविड में, और उन्होंने पूरा बताया उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था हॉस्पिटल के साथ, उनकी एक बच्ची है, वो सोल अर्नर थे, कमाने वाले सिर्फ वही थे, और उनकी भी मौत हो गई, तो उन्होंने बहुत तकलीफों का सामना किया, लेकिन फिर वो कहती कि हाँ मैं सरकार से उसमें परेशान हूँ, लेकिन तब भी मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ। क्या वजह थी? दो वजह थी, एक लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने का इम्प्रूव हुआ है, मैं एज एन औरत मैं सेफ फील करती हूँ, पुलिस थाने में मैं जाती हूँ कंप्लेन लिखवाने तो पुलिस का रवैया मेरे तरफ बदल गया है, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। और दूसरा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो था कि मुझे योगी रूल के अंडर जो है टेररिस्ट से डर नहीं लगता, टेररिस्ट से मैं प्रोटेक्टेड रहती हूँ। कौन से टेररिस्ट, कहाँ के टेररिस्ट, उन्होंने नहीं नाम लिया, उन्होंने बस बोला टेररिस्ट या जो बाहरी ताकतें आउटसाइड ऑफ फोर्सेस। तो आप समझ रहे हैं जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, एक तरह की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, या उनकी जो पॉलिटिक्स है कि किस तरह से एक सेंटिमेंट, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बना के रखे हमेशा, उस पे उन्होंने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया, तो हमें पता ही है। लेकिन मैं चाह रही थी कि कोविड अल्टीमेटली उसको बीट कर सकता है उस सेंटिमेंट को कि नहीं, और मेरे जो एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगता है वो बीट कर पाए।
शुक्रिया फातिमा। और अब बात करते हैं पांचवें चरण को लेकर। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए है आदित्य मेनन और साधिका तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया प्रतीक।
तो साधिका, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। पांचवें चरण में एक चित्रकूट शामिल है और पूर्वांचल और अवध के भी और भी कई इलाके हैं। आपने खासकर चित्रकूट में आप गई थी, ग्राउंड कवरेज आपने वहां से की है, क्या मुद्दे आपने देखे हैं, लोगों से क्या बातचीत की है, क्या माहौल है वहाँ? जी
जी जी प्रतीक। तो सबसे ईस्ट यूपी में जो एक मुद्दा जो अभी तक इतना प्रमुखता सामने नहीं आया था, जो अब आना शुरू हुआ है, वो है स्ट्रे कैटल का, छुट्टे पशु का मुद्दा है ये, गाय को लेकर जो बात, ये अभी तक नहीं कही गई थी, मोदी जी ने भी अभी रिसेंटली ही ये बोला लेंगे। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक इस समय इतनी बड़ी है इन इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए कि बिना, मतलब मोदी जी के पास भी ऑप्शन नहीं है कि इसको एड्रेस बिना किए गांव इन एरियाज में लड़े जा सके। तो सबसे बड़ा मुद्दा, और देखिए उत्तर प्रदेश में किसान जो है लार्जली वो मीडियम से स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज्ड होता है, मतलब जमीन जो है उनके पास वो छोटी जमीन है। बहुत सारे किसान है जिनके पास पूरी एक बीघा जमीन भी नहीं है, 10 बिस्वा 15 बिस्वा 20 बिस्वा से कम जमीन के किसान है ज्यादातर। तो उस स्थिति में ऑलरेडी जो जहां पर घाटा हो रहा है किसानी में, उसके साथ छोटे पशु की जो समस्या है वो एकदम एज से पुश कर रही है किसानों को कि बहुत सारे किसानों ने इन इलाकों में कंप्लीटली खेती छोड़ दी, खेती करनी बंद कर दी है और माइग्रेट करने को मजबूर है। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। दूसरा यहाँ पर जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो, क्योंकि वो लोग अब किसानी से दूर जाते जा रहे हैं, जो कि यूपी का भी एक लार्ज मुद्दा रहा ही है अभी काफी समय से, माइग्रेशन का और माइग्रेंट वर्कर्स के प्रॉब्लम्स का। तो चित्रकूट से खासकर जो हमने रिपोर्ट किया था वो बांदा, महोबा और चित्रकूट, हमको पता चला कि 408 किसानों और प्रवासी मजदूरों ने पिछले डेढ़ साल में आत्महत्या की, जिसका कारण ज्यादातर बेरोजगारी था, बेरोजगारी, जमीन ना होना, खेत में नुकसान, कर्ज। तो ये सारे जो हैं ये काफी मुख्य मुद्दे हैं, पर कितना वोटर इन मुद्दों पर वोट करेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। पर जहां तक जो पॉलिटिकल मुद्दा है इन सब में से, वो डेफिनेटली स्ट्रे कैटल, छोटा पशु का जो मुद्दा है वो काफी पॉलिटिकल है इस समय।
ओके, आदित्य आप गोंडा गए हैं, बाराबंकी में भी आपने कई लोगों से बातचीत की है, तो क्या देखा है आपने वहां पर, क्या ऑब्जर्वेशंस है आपके?
प्रतीक जी, जैसे गोंडा में और बाराबंकी में एक जो मुद्दा है वो दोनों ही जिलों में और ज्यादातर जिले जहां पर हम जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कि वो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, लोग ग्रेजुएट पढ़ गए हैं, काफी ने 12वीं पास करी, इंटर पास करी, और वो कहते हैं कि नौकरियां नहीं है। गोंडा में एक माइग्रेंट लेबरर्स की भी समस्या है कि लोगों की नौकरियां चली गई लॉकडाउन के दौरान, और वो वापस आए और यहाँ पर उन्हें कोई आजीविका का जरिया नहीं मिल रहा है। तो गोंडा में एक मुद्दा था। बाराबंकी में जातिगत मुद्दे थोड़े और व्यापक तौर पर नजर आए। जैसे एक काफी कम्युनिटीज थी जिनको लग रहा था कि उनके खिलाफ किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ठाकुर डोमिनेशन ज्यादा है सरकार में। तो खासतौर पर यादव कम्युनिटी और नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी, इनके ये इनमें ये जो सेंटिमेंट है सबसे ज्यादा था। पासी का ये सेंटिमेंट काफी ज्यादा मजबूती से नजर आ रहा था। तो इन दो जिलों में कुछ मुद्दे मिलते जुलते हैं, जैसे बेरोजगारी का हमने बात की, जैसे सादिका ने कहा आवारा पशु, वो मुद्दा भी इन दोनों जिलों में देखने को मिला।
ओके सादिका, आपने कई माइग्रेंट लेबर से भी बातचीत की है इन इलाकों में, तो क्या उनका क्या इस पर कहना है और आपने क्या उस पर देखा पाया?
जी, तो मेरी समझ में माइग्रेंट लेबरर्स से जो मेरी बात हुई है, ज्यादातर प्रवासी मजदूर जो हैं वो इस समय जो अक्सर वोट करने के लिए नहीं मौजूद होते हैं यूपी में, वो इस समय हैं क्योंकि लॉकडाउन के वक्त जो लोग वापस आए थे उनमें ज्यादातर अभी तक वापस नहीं गए हैं।
ओके,
तो उनके मुद्दे, उनमें काफी गुस्सा है क्योंकि कोई समर्थन नहीं मिला, बहुत कर्ज है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी हमको ये समझा है कि 14 स्टेट्स में लगभग 46% लोग जो है वो कर्ज में हैं। तो प्रवासी मजदूरों की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब है, खासकर इन इलाकों में, क्योंकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी नहीं है। जिन जिलों में मैं थी उनमें मनरेगा का काम ज्यादा नहीं, यूपी भर में पूरे राज्य में मनरेगा का काम जो है वो बहुत ही कम है। सिर्फ कुछ 56% लोगों को, मतलब टोटल 56% लोगों को 100 दिन का काम मिला ही नहीं है पिछले 4-5 सालों से। तो प्रवासी मजदूर के पास ना तो अपना मजदूरी का काम है, बैकअप में जो खेती होती है या मनरेगा होता है वो काम भी नहीं है, और महंगाई भी ज्यादा है। तो उसकी वजह से, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से वो समस्याएं हैं, लेकिन कितना वो ट्रांसलेट करे मजदूरों के, खास करके अगर बात करें तो वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों से जहां तक मैंने बात करी है तो गुस्सा है, पर ये भी वही प्रवासी मजदूर हैं जिनके, या फिर वो परिवार जिनके घरों में प्रवासी मजदूरों ने आत्महत्या की है, उनका फिर भी ये कहना है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो उनका वोट जो है वो किस तरफ जाएगा वो ये मुद्दे नहीं डिसाइड करेंगे।
आदित्य, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो अयोध्या से दूर बैठे हमको ये लगता है कि, और कई जो मेरे आसपास लोग हैं उन्हें ये लगता है कि अयोध्या में एकमात्र राम मंदिर का मुद्दा है और लोग उसी से काफी खुश भी हैं और बीजेपी वही मजबूत है। तो असल में वहाँ क्या मुद्दे हैं इसके अलावा, और क्या यही बात सच है कि राम मंदिर का ही मुद्दा है और लोग बीजेपी से इसको लेकर काफी खुश है?
अयोध्या में जैसा कि काफी उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके साथ साथ अयोध्या में जो लोकल बीजेपी के एमएलए हैं उनके खिलाफ काफी गुस्सा वहां पर नजर आया। लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि राम मंदिर के नाम पर कम से कम एक बार तो बीजेपी को वोट बनता है तमाम मुश्किलों के बावजूद। ऐसा नहीं है कि दूसरी समस्या नहीं है, लेकिन राम मंदिर की वजह से लोग अपनी इन समस्याओं को भुलाने को तैयार है कम से कम इस इलेक्शन के लिए।
तो सादिका, इसके पहले जब हम यूपी इलेक्शंस को देखते थे, समझते थे, तब गाय काफी इम्पोर्टेंट रहती थी, ना ही सिर्फ यूपी इलेक्शंस में, पूरे भारत में, कई और भी राज्यों में वहां पर गाय राजनीति में काफी घुस चुकी थी। तो इस बार गाय को लेकर क्या लोगों के बीच बातचीत है?
जी जी प्रतीक, तो मेरे हिसाब से गाय जितना वोट मोबिलाइज करने में गाय ने पिछले चुनाव में मदद करी थी, उतना ही वोट काटने में गाय ने इस बार, मेरी समझ में उतना ही वोट इस बार गाय ने काटा है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि जैसे मैं बात कर रही थी आवारा पशु का जो समस्या है उसकी वजह से। दूसरा ये जिन लोगों को, और यूपी में गांव में लोगों को अपनी गायों से लगाव होता है, तो ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, पर जितना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है उसकी वजह से जितना मेनेस क्रिएट हो रहा है, जितनी समस्या किसानों को हो रही है, पहला तो ये। दूसरा, गायों की स्थिति, गौशालाओं की जो स्थिति है उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसके बावजूद गाय जिस तरीके से मर रही है, गौशालाओं को चलाने वाले लोगों को जिस तरीके से पैसों की समस्या हो रही है, उनको सरकारी समर्थन नहीं मिल पा रहा है, गौशालाएं बना दी गई हैं, लोगों को गौशालाएं चलाने का काम दे दिया गया है, लेकिन जो अपकीपिंग और मेंटेनेंस है उसका पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो वो लोग भी नाखुश हैं। और तीसरा, जिन लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइवलीहुड गाय पर डिपेंडेंट था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री उसमें से एक एग्जाम्पल है, उन पर उनका काम कंप्लीटली बंद हुआ है, तो वो भी इस वजह से उनका भी वोट थोड़ा बहुत जो है वो कटा है। तो मेरे हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट गाय थी उतना ही इम्पोर्टेंट इस चुनाव में भी गाय है यूपी में, लेकिन जिन कारणों से इम्पोर्टेंट थी वो एब्सोल्युटली बिल्कुल उलट गए हैं।
जी आदित्य, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के जो भाषण हम सुन रहे हैं उसमें स्थानीय मुद्दे काफी बीच में कम हो गए थे, ज्यादातर आतंकवाद और इस तरह की बातें बीजेपी के नेताओं के भाषणों में आ रही थी, तो स्थानीय मुद्दे उसमें बहुत ही कम शामिल थे और इससे पोलराइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है।
हाँ, तो देखिए पोलराइजेशन की तो काफी कोशिश की गई थी, चूंकि ऐसा लग रहा था कि पहले दो चरण में बीजेपी को कुछ इलाकों में नुकसान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसकी भरपाई करने के लिए काफी जरूरी समझा गया शायद पार्टी के जो भी लीडर हैं उनके तरफ से कि किसी भी तरह से चौथे और पांचवें फेज में खास तौर पर इस जो भी चाहे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो या कम्युनल पोलराइजेशन का के तरीके से हो अपना वोट कंसोलिडेटरी रखा जाए। लेकिन ग्राउंड पर जिस किस्म का पोलराइजेशन 2017 में नजर आ रहा था उस किस्म का पोलराइजेशन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। मैं मिसाल के तौर पे बहराइच सीट की बात करना चाहूंगा जो अभी पांचवें चरण में जहां चुनाव होने वाला है। पिछली बार वहां पोलराइजेशन के तहत चूंकि एक 40-50% मुस्लिम आबादी है जहां मुस्लिम वोट बट गया था पिछली बार और हिंदू वोट एक तरफा पड़ा था बीजेपी को, तो बीजेपी की जीत हुई थी वहां पे। इस बार वो जो एक तरफा वोटिंग हुई थी पोलराइजेशन की वजह से वैसी होती हुई नजर नहीं आ रही है। वहां पर काफी हद तक लोकल मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, आवारा पशु के मुद्दे, एमएलए के तरफ नाराजगी, ये तमाम कारणों से एक जो एक किस्म का वन साइडेड वोटिंग की उम्मीद बीजेपी कर रही थी वैसा हो नहीं रहा है। और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी में एक सेंस है वहां पर कि समाजवादी पार्टी ही शायद सबसे मजबूत पार्टी है बीजेपी को हराने के लिए, तो एक एक टिल्ट समाजवादी की तरफ नजर आ रहा है और वहां वकार शाह उनके एक मजबूत लीडर भी हैं। तो जो पोलराइजेशन का फायदा हो रहा था पिछले इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में भी वैसा इस बार थोड़ा सा कम लग रहा है, कम अज कम अब तक जितने चरण गुजरे हैं उनमें।
ओके, यानी आप दोनों ने जो ऑब्जर्वेशंस बताई है उनमें और जो नेताओं के भाषण हैं उसमें काफी अंतर समझ आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए।
तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।